الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ويقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ويقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلى آخر الحديث. رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهما. ایک طويل حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی کئی مرتبہ مختلف مواقع پر اور مسلم شریف میں بھی اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس میں میدان حشر یعنی قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، بڑا عجیب و غریب منظر ہے. اور اس کی ابتدا میں جو واقعہ پیش آیا، اولاً حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے، یعنی کسی صحابی نے دعوت دی تھی اور ہم اس میں شریک ہوئے. انصار اہل مدینہ تھے، ان کے اپنے اپنے باغات بھی تھے، کبھی کبھی انصار صحابہ اپنے گھر پر اور کبھی اپنے باغ پر بلایا کرتے تھے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب محسوس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے، محسوس ہو جاتا ہے بھوکا آدمی اور ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا، اور دونوں میں فرق ہوتا ہے، تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس وقت حضور کے یہاں کھانے کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. بھوک کو محسوس کر کے سب صحابہ کو آپ سے محبت تھی، لیکن صحابہ کے گھر بھی خالی ہوا کرتے تھے، وہاں کوئی ایسی دولت کے ریل پیل نہیں تھی. فخر میں، مجاہدے میں اور بڑے ہی مشکل ترین حالات میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، خصوصاً ابتدائی دور، مثال نہیں اس کی. تو کسی صحابی نے دعوت دی، بکری عموماً ملتی ہے گھروں میں، لوگ رکھتے ہیں، باغات میں رکھتے ہیں، ایک بکری ذبح کی، اور بکری کے اگلا پیر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستہ کہتے ہیں، تو وہ جلدی جلدی پکا کر پیش کیا. لکھا ہے کہ گوشت کے اندر دستہ جو ہوتا ہے، یعنی پیروں کا حصہ، وہ بھی اگلے پیر کا، وہ جلدی گل جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وکانت تعجبہ، حضور کو یہ دستہ پسند تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ نجاست سے دور حصہ ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے، اور صحابہ کے پیش کرنے کی وجہ یہ کہ آسانی سے یہ جلدی پک جاتا ہے. تو چونکہ بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، इसलिए जो हिस्सा जल्दी पक गया वही हाजिर खिदमत किया गया, हुजूर की खिदमत में पेश किया गया। फन हसा मिनहा नासतन, गोश्त भी उस ज़माने में और अरब ख़ास तौर पर बिल्कुल पका हुआ नहीं खाते थे, कच्चा पक्का होता था, दांत से नोचना पड़ता और उसकी बोटियाँ अलग होती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के दस्ते का एक हिस्सा दांत से नोचा और खाना शुरू किया और भी इरशाद फरमाया, अना सय्यदुन नास यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन तमाम लोगों का सरदार होगा। सैयद बमाना सरदार, सबका बड़ा। और ये दुनिया ही की बात नहीं, अल्लाह ने दुनिया आखिरत की बात नहीं, अल्लाह ताला ने दुनिया ही में भी आपको सैयद बनाया, सैयदुन नास फिर दुनिया व आखरा, दुनिया में भी आप सरदार हैं। इसीलिए कहा जाता है सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अव्वलीन व आखरीन के, दुनिया और आखिरत के सरदार हैं, अफजल हैं। लेकिन उस वक्त एक ख़ास बात बयान करनी है, इसलिए क़यामत का जिक्र फरमाया, सैयदुन नास यौमल क़यामा। और फिर फरमाया हल तदरून मिन मज़ाका, तुम जानते हो कि ऐसा कैसे होगा, किस तरीक़े पर मेरा सरदार होना मालूम होगा। और फिर आपने उसकी तफसील बताई, उसका एक इजमाल आपके सामने पेश करना है कि क़यामत के दिन जब नफ़े सूर होगा, सूर दोबारा फूंका जाएगा, तो तमाम इंसान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से क़यामत के आखिरी दिन तक ज़मीन में दफन होंगे, सब निकलना शुरू होंगे कब्रों से। रिवायत में आता है कि बाद जगह ऐसी होंगी कि एक एक कब्र से 60 आदमी उठेंगे, 60 आदमी दफन होंगे। अब और जगह तो हो ना हो, लेकिन जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में तो यही मालूम हो रहा है, हर 6-8 महीने के बाद एक दूसरा आ जाता है कब्र में, तो पहली खाली हो जाती है। खुदा जाने सदियों से ये सिलसिला जारी है, जन्नतुल बकी की जगह तो एकदम महदूद है, छोटी सी जगह है। हर रोज़ हर नमाज में ऐलान होता है अस्सलातु अलल अमवात, अस्सलातु अलल अमवात, कभी 8 कभी 10 कभी 5 लोग जो हैं नमाज जनाजा पढ़ते ही उनकी, और वो सब जन्नतुल बकी में दफन होते हैं। उनमें का एक हिस्सा तो मखसूस किया गया है उन लोगों के लिए जो अव्वलीन और साबिकीन में है, वहाँ तो जो दफन हो चुके थे हज़रात सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत, वहाँ तो किसी की गुंजाइश ही नहीं है, एक चौथा या एक तिहाई हिस्सा तो उसी के लिए मखसूस है। फिर बाकी जितना जन्नतुल बकी का हिस्सा है उसमें तमाम अमवात दफन हो रही है। अब आप देखेंगे अगर चंद सालों में बार बार हज़ारों तदफीन हो रही है, उतनी ही जगह है, वही हाल जन्नतुल माला का है, वहाँ भी यही मामला है। तो कोई शक नहीं है कि एक एक कब्र में से 60 आदमी कम से कम निकलेंगे, और फिर एक मैदान होगा बिल्कुल सीधा, ना उसमें कहीं ऊंच होगी कहीं नीच होगी, कोई खड्डा नहीं कोई पहाड़ नहीं, जैसे लोग क्रिकेट मैदान बनाते हैं ना, बिल्कुल सीधा हमवार होता है ताकि बराबर दौड़ें। तो अल्लाह मियाँ भी क्रिकेट मैदान बनाएंगे, खुदा जाने कितना बड़ा होगा। अब अंदाज लगाइए कि एक वक्त में 10 लाख आदमी कहीं जमा हो जाए, कितना रश हो जाता है, जबकि दुनिया में एक वक्त में अरबों हैं, अरबों, इतने लाख हैं कोई तसव्वुर नहीं है। एक ही वक्त के अगर इंसान जमा किए जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा, खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, चिर जाए कि कब से दुनिया कायम है, कई हज़ार बरस गुजर गए, हर साल हर सदी में हर दौर में करोड़ों करोड़ों इंसान मौजूद हैं, कितना बड़ा मैदान होगा। अल्लाह ताला पूरी ज़मीन को हमवार बना देंगे, कोई जगह ऊंची नीची रहेगी नहीं बाकी, और सारे इंसान हैरान और परेशान कब्रों से उठेंगे, यखरुजून मिनल अजदास सिरा, दौड़ते होंगे फौरन ही मैदान हश्र में जाना है, और सारे जमा हो जाएंगे। जब वहाँ इंतज़ार होगा, खड़े हैं, न कोई साये की जगह है, न पैरों में चप्पल है, न सर पर टोपी है, नंगे बदन क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे ईमान को बचाकर वहाँ तक ले जाए और हमें सही सलामत रखे। थोड़ी देर का तसव्वुर अगर कायम कर लें मैदान हश्र का, तो वही हमारे नेक बनने के लिए काफ़ी हो जाए। कुरान करीम में आयात है, आप पढ़ें। काफिर कितनी परेशानी में होगा, सर से पैर तक पसीना ही पसीना, परेशान, गर्मी कितनी होगी, लेकिन ऐसे हाल में भी अहले ईमान सुकून के साथ होंगे। अल्लाह अकबर। और फिर जिन लोगों को अर्श का साया नसीब हो जाएगा, हदीस शरीफ में आता है सबअतुन युज़िल्लुहुम अल्लाह फी ज़िल्ली, सात आदमी यानी सात किस्म के आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया मैदान हश्र में अता फरमाएंगे। वह बड़े मज़े में होंगे, उनमें जहाँ इमाम आदिल होगा, इंसाफ करने वाला बादशाह, वहीं पर एक वो शख्स भी होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, एक वो शख्स होगा जिसका दिल मस्जिदों में लटका हुआ है, अल्लाह की इबादत के लिए वो तैयार है, एक नमाज पढ़कर घर गया, दूसरी नमाज के लिए फिक्र हो रही है, उससे गया तीसरी नमाज की फिक्र हो रही है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अर्श का साया दे। कितना आसान काम है। ये भी नहीं कह रहे मस्जिद में घुसे रहो, हर वक्त एहतिकाफ करो, नहीं, जाओ और फिर आओ। यह है क़ल्ब हो मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। ये नहीं कह रहे आप एहतिकाफ कर लो पूरी ज़िंदगी का, निकलना ही नहीं, यही बात, यही टॉयलेट, यही सब कुछ। ऐसा नहीं कह रहे, तो सिर्फ 10 दिन का एहतिकाफ है, इंसान को वही भारी पड़ता है बाद मरतबा। लेकिन खैर अल्लाह तौफीक देते हैं अपने नेक बंदे को, तो क़ल्ब हो मुअल्लक़, इतना ही काम कर लो ज़िंदगी में कि सुबह नमाज पढ़ ली, चले जाओ अपना काम करो, कारोबार करो, मुलाजमत करो, 6 घंटे 8 घंटे, फिर जोहर के नमाज वत हो गया, फिर आगे फिर चले गए 2 4 5 6 घंटे, फिर आगे असर में फिक्र है नमाज की। कितना आसान काम है, और कई चीज़ें हैं बाहर इस वक्त उसको बयान करना नहीं है। तो ऐसे लोग क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए, सात किस्में हैं, किसी भी किस्म में हमको दाखिल फरमा दे, तो काम बन गया, बेड़ा पार हो गया। उसी में एक ये भी है, वरजुलान यतहाब्बा फिल्लाह इस्तमा अलैह व तफर्रका अलैह, दो आदमी हैं जिनकी आपस की मोहब्बत अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की खातिर मोहब्बत हो जाए। क्या मतलब? दोनों एक दूसरे को दीन की तरफ दावत देने वाले बन जाए, दोनों मस्जिद में लाने वाले, दीन के कामों में शरीक करने वाले, एक दूसरे का तआवुन करने वाले बन जाए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। अल्लाह हम सब को महरूम न फरमाए, अपने करम से ऐसी जगह अल्लाह हमारे लिए मुकद्दर फरमाए। तो खैर मैदान हश्र होगा, तपती हुई जगह होगी, गर्म होगी, लोग पसीनों में डूबे होंगे, और अव्वलीन व आखरीन जमा होंगे, अनगिनत इंसान, ज़माना गुजर जाएगा, कुछ पता नहीं क्यों खड़े हैं, क्या मकसद है, कहाँ जाना है, किधर हमारा रुख होगा। जब खड़े खड़े तंग हो जाएंगे तो आपस में बातें करेंगे, यब लुगुन नासु मिनल गम्मि वल कर्ब, लोग इतने गम और मुसीबत में पहुंच जाएंगे कि ला युतीकून, बर्दाश्त से बाहर होगा, इतना गम, इतनी परेशानी होगी। फिर आपस में कहेंगे भाई देखो क्या हाल हो रहा है हम लोगों का, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। भाई कम से कम किसी को तैयार करो जो अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर हमारी सिफारिश करे कि अल्लाह पाक हम यहाँ खड़े हैं, ज़माना गुजर गया, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, न खाने का निज़ाम, न पीने का निज़ाम, भूखे हैं, प्यासे हैं, हाल बुरा है। तो सब आपस में बातें करेंगे, फिर सब की तवज्जो जाएगी कि भाई जब मुसीबत आती है बेटों पर, यूँ तो बेटे दुनिया में घूमते रहते हैं, मैं कहा कहता हूँ कि जब जेब में पैसे हों और गर्मी हो तो इंसान बाप को पूछता भी नहीं है, लेकिन जब कोई मुसीबत में फंस जाए फिर अब्बा ही याद आते हैं। तो उस वक्त जब सारी मुसीबतों में फंसे होंगे तब बाबा आदम याद आएंगे, है ना, अबूकुम आदम, अपने अब्बा जान आदम ही के पास जाओ, वहीं चलो, कम से कम उनसे तो हम बात करें। तो सबसे पहला इंतखाब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम में करेंगे कि चलो हम उनके पास जाएं, जाकर उनसे मिलेंगे, कहेंगे आप अब्बा जान हैं, तमाम इंसानों के अब्बा हैं, हम में से हर एक के अब्बा हैं, किसी को इसमें इख्तलाफ़ नहीं है। अल्लाह ने आपको अपने दस्ते मुबारक से पैदा किया है, रूह फूंकी है, फरिश्तों से आपको मस्जूद बनाया है, आपको सजदा किया है और फिर आपको जन्नत में भेजा है। तो आपका मकाम तो बड़ा ऊंचा है, बड़ा एजाज़ है आपका। अल्लाह तशफ़ऊ लना इला रब्बिक, अल्लाह के वास्ते सिफारिश कर दीजिए। आप नबी भी हैं, बड़े भी हैं, अब्बा भी हैं, सब कुछ हैं। देखिए क्या हाल हो रहा है हमारा, किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, ज़रा बारगाह इलाही में थोड़ी सिफारिश कर दीजिए कि यहाँ हिसाब किताब हो जाए, मामला तय हो जाए और फिर हम यहाँ से कहीं मुंतकिल हो जाए। फरमाते हैं हज़रत आदम, इन रब्बी ग़ज़ब ग़ज़बन, मेरे हक़ रब तो आज इतने नाराज़ हैं, इतने खफा हैं कि इतने खफा कभी नहीं हुए और न कभी इतने खफा होंगे। इसलिए कि सारे गुनहगार भी वहाँ जमा हैं, जहाँ नेक इंसान भी जमा है। ज़ाहिर बात है कि नाफरमानी को देखकर और नाफरमानों को देखकर ग़ज़ब पैदा होता ही है। और फिर मुझे अपनी एक ग़लती याद आ रही है कि अल्लाह ने फरमाया था कि देखो इस दरख्त का फल न खाना, और मैंने वो फल खा लिया। अब मुझे डर है कहीं अल्लाह ताला ने पकड़ कर ली, मैं जाऊँ तुम्हारी सिफारिश करने के लिए और मेरे अल्लाह ने पूछ लिया कि बताओ वो दरख्त का फल क्यों खाया था। और किसी के पास गुस्से की हालत में जाकर दरख्वास्त देना कोई आसान काम नहीं है। हमारे दारुलूमों में मदरसे के तलबा जानते हैं, मोहतरम साहब जब खफा होते हैं तो छुट्टी की दरख्वास्त लेके नहीं जानते हैं, जानते हैं कि फौरन रद्द कर देंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। देखते हैं मूड है कि नहीं है, मूड देखते हैं, जब देखते हैं हाँ खुश हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तब जाके दरख्वास्त देते हैं कि मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए। मिल जाती छुट्टी ऐसे वक्त में। तो अल्लाह मियाँ भी जब देखेंगे हज़रत आदम के इस वक्त मौका ही नहीं है दरख्वास्त पेश करने का, अगर खफा हो गए, अल्लाह ने मुझसे ही पूछ लिया कि तुमने दरख्त का फल क्यों खाया, तो क्या जवाब दूंगा? कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जाओ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास। अब रिवायत का इख्तिसार कर रहा हूँ, हज़रत आदम बार सिफारिश नहीं करेंगे और कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनसे कहो वो बड़े हैं, वो भी आदम सानी हैं, जो कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक की नस्लों को फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जारी फरमाया और बड़ी उम्र उनको अता फरमाई, 950 साल दुनिया में रहे, बड़े उनके भी मनाकिब हैं, कमालात हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमें भी डर लगता है, इसलिए कि मैंने ग़लती की है कि अपने बेटे के बारे में अल्लाह से कह दिया कि या अल्लाह वो मेरा बेटा है, उसको आप हलाक ना फरमाएं, और अल्लाह ने मना किया था, अब मैं क्या जवाब दूंगा? वहाँ से फिर कहेंगे नहीं, वहाँ नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, सबसे ऊंचा मकाम है, और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, लेकिन वो भी किसी तरह माजरत करेंगे। उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, वो भी माजरत कर देंगे। आखिर में नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास सारी उम्मत आएगी और वो दरख्वास्त करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला फरमाएंगे हाँ ठीक है, चलो आज मैं तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं, हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और इतना लंबा सजदा करेंगे जैसे एक वीक होता है, एक हफ्ता, एक हफ्ते के बकदर 7 दिन में जितना टाइम है, इतनी देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहेंगे। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि या हबीबी, या मोहम्मद, क्या कहना चाहते हो, चल इरफा रासक, अपना सर उठाइए, वशफा तुशफा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश फरमाएंगे कि ये सारी इंसानियत امت ہی نہیں ساری انسانیت اول سے لے کر آخر تک پریشانی کے عالم میں کھڑی ہے, آپ ان کا فیصلہ فرمائیے. تب حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے کچھ معاملہ شروع ہوگا, حساب و کتاب. تو صرف میدان حشر ہی اتنا سخت ترین میدان ہے کہ انسان کے گناہ وہاں پر یاد آ جائیں گے اور ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ وہاں بھی پرسکون رہیں گے, ورنہ پھر حالات اور بھی بہت زیادہ تنگ ہوں گے. یہ سب وہ حالات ہیں جو احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے, قرآن کریم میں مذکور ہیں. اس پر جو آدمی یقین نہ کرے تو اس کو پاگل ہی کہیں گے. اس سے بڑھ کر سچی کتاب کوئی نہیں ہے, احادیث صحیحہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. جو باتیں کہیں گے وہ بالکل حق ہے. اور یقین نہ آئے تو پھر اس کی مثال لکھی ہے, ایسی مثال ہے جیسے کوئی آدمی ماں کے پیٹ میں ہو, کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہو, آٹھویں مہینے میں ہو, نویں مہینے میں ہو, اسے کہے کہ بھائی جاؤ دنیا میں جانا ہے تمہیں, پھل فروٹ کھانے ہیں, سموسے اور پاپڑ کھانے ہیں, اور وہاں جاؤ مزے کی زندگی, بہت بڑی زندگی. تو بچہ کہے گا نہیں نہیں میں تو یہاں بہت مزے میں ہوں, یہاں تو مجھے مفت کی روٹی مل رہی ہے, مفت کی غذا مل رہی ہے. وہ اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے, وہ اس کی وہی پوری دنیا ہے. تو وہ کہے گا نہیں میں باہر نہیں جاؤں گا, وہ انکار کرتا ہے. لیکن اللہ کی تقدیر ہے جو اس کو باہر لے کر آتی ہے. جب وہ باہر آتا ہے پھر دیکھتا ہے دیکھو دنیا کیسی باغ و بہار ہے. مگر یہ دنیا بھی کیا ہے, کچھ نہیں. وہاں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے وہ تو کچھ اور ہی اس کی شان ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور دنیا کی زندگی میں اللہ ہمیں پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھیں گے.